नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना देश की स्वच्छ ऊर्जा यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि योजना का उद्देश्य बड़े पैमाने पर निजी निवेश को आकर्षित करना और रोजगार सृजित करना है।
कंप्रेस्ड बायोगैस CBG, इसका प्रोडक्शन एक डेकेड के अंदर 10 गुना बढ़ाने का टारगेट, करीब 5 MMSCMD प्रोडक्शन के लेवल तक पहुंचाने का इसमें टारगेट लिया गया है। अगर इसको हम एनवायरमेंटल पॉइंट से देखें तो दिस विल सेव अबाउट 40 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, करीब 75,000 करोड़ रुपीज नेशनल GDP को ऐड होगा और अबाउट 1.5 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड बाय दिस प्रोग्राम।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बहारा चारियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गोवर्धन योजना को मंत्रिमंडल की मंजूरी स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री मोदी ने कहा कि यह योजना कंप्रेस्ड बायोगैस को बढ़ावा देगी। उन्होंने कहा कि इस योजना से निवेश और नवाचार के लिए एक मजबूत और स्थिर इकोसिस्टम तैयार होगा। किसानों, सहकारी समितियों, लघु और मध्यम उद्यमियों, महिला उद्यमियों और ग्रामीण उद्यमियों को इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा में कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया है। इसे इस वर्ष 5 जून को जारी किया गया था। अध्यादेश को बाहरी आर्थिक घाटे के प्रभाव को कम करने, घरेलू अर्थव्यवस्था में स्थिरता सुनिश्चित करने और अधिनियम के कुछ प्रावधानों में संशोधन करके मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों से प्रभावित प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन देने के उद्देश्य से जारी किया गया था। संसद ने विनियोग संख्या 3 विधेयक 2026 आज पारित कर दिया। राज्यसभा ने चर्चा के बाद विधेयक को लोकसभा को लौटा दिया। लोकसभा पहले ही विधेयक पारित कर चुकी थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023 के दौरान हुए अतिरिक्त व्यय के लिए अनुमोदन मांगा है। जम्मू कश्मीर के संबंध में सदस्यों की चिंताओं पर वित्त मंत्री ने कहा कि सदन को आश्वासन दिया कि 2019 में अनुच्छेद 370 के निरसन के बाद सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पर्याप्त वित्तीय और प्रशासनिक सहायता प्रदान की है। सरकार ने बताया कि पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद 10 नाविकों सहित 16 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई और 75 भारतीय घायल हुए हैं। राज्यसभा में लिखित जवाब में विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि सरकार ने सरकारों के समन्वय से मृतक भारतीय नागरिकों के परिवारों को उनके पार्थिव शरीर को शीघ्र भारत वापस लाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने आज फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत इसराइल विशेष रणनीतिक साझेदारी में हुई निरंतर प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के पारस्परिक लाभ के लिए विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से आज मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। यह सफल परीक्षण देश की सामरिक प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने उन दावों का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार विमानन टरबाइन ईंधन में इथेनॉल मिलाने की योजना बना रही है। श्री नायडू ने बताया कि ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। उन्होंने कहा कि इथेनॉल और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पूरी तरह से अलग है और इन्हें एक ही नहीं समझना चाहिए। झारखंड और केरल में भर्ती परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर विद्यार्थियों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। झारखंड में मॉनसून सत्र के पहले दिन JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में झारखंड विधानसभा में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। और खेलों में कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन में तन्वी शर्मा, अश्मिता चाहिला और रक्षिता रामराज ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में पृथ्वी कृष्णमूर्ति रॉय और कृष्ण प्रसाद गरागा की जोड़ी भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।